अब इतना समय नहीं है, नहीं तो बहुत सुंदर सुंदर बातें इसमें उन्होंने कहा है, विशेष करके जीव गोस्वामी का कोट करके उन्होंने दिया है, ही हैज कोटेड द लैंग्वेज ऑफ रूप जीव गोस्वामी एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर गुरु तत्व। बट वी हैव नो टाइम नाउ, वी विल बिगिन अवर व्यास पूजा। दिस इज ऑल्सो एसेंशियल, बट दिस इज मोर एसेंशियल व्हाट वी आर डूइंग। यदि ये नहीं रहे तत्व ज्ञान की ये जो बातें हैं नहीं है, हम समझते हैं कि यही सबसे श्रेष्ठ, गुरु महाराज आज बड़े प्रसन्न होंगे जो आज ये सब लोग गुरु तत्व की आलोचना कर रहे हैं। यही व्यास पूजा हम लोगों ने एक तरह से हम लोगों ने की, सभी लोगों ने। अब ऊपर से भी जो फॉर्मेलिटीज है उसको भी देना, उसको भी फॉर्मेलिटी मत समझो। अभी जो पुष्पांजलि दी जाएगी, पुष्प को अपना हृदय बनाना, यू शुड नो द मूड इज दैट अवर हार्ट इज लाइक लोटस फ्लावर, वेरी स्मूथ, वेरी फ्रेग्रेंट, वेरी स्वीट, वेरी मेलोडियस, एंड आई एम टेकिंग माई हार्ट एज ए लोटस एंड गिविंग इट इन द लोटस फीट ऑफ आवर गुरुदेव। ये समझ करके करना चाहिए। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं, हमसे बहुत सी त्रुटियां हो गई, हम लोग अनकंडीशनली सरेंडर नहीं हो सके, किंतु आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी जो कुछ त्रुटियां थी, दोष था, उसको दूर करके आज से मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं कि गुरु जी की मनोभिलाषा पूर्ण करेंगे और उनके अनुसार में हम चलेंगे, जैसे जैसे उन्होंने शिक्षा दी है वैसे करेंगे। टूडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गिव पुष्पांजलि इन द लोटस फीट ऑफ आवर गुरुदेव, that we promise that I will do for pleasing my Gurudev। यदि ऐसी होगी तो हमारी पुष्पांजलि हो जाएगी, अन्यथा पुष्पांजलि नहीं होगी। इसलिए अब हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करते चलेंगे और थोड़ा सा यहाँ अध्ययन करेंगे और थोड़ा सा हम आरती कर देंगे। इधर ठाकुर जी का भोग भी लग रहा है, अब देर नहीं होगा,
नमस्कृत्यम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीर। आज हम लोगों का सवेरे से ही व्यास पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। सवेरे हम लोगों ने बतलाया था जो महाप्रभु जी से लेकर, महाप्रभु जी क्या ब्रह्मा से ही लेकर और आज तक भजन का मूल गुरु निष्ठा बतलाया गया। गुरु जी का इतना महत्व है कि कभी 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 हम लोग भूल जाते हैं और गुरु जी के दिए भी जो चीजें हैं जिन्होंने हमको दिया है उसकी तुलना जागतिक चीजों से हम दे देते हैं और उसी में वंचित होते हैं। गुरु जी की अप्राकृत जो अनुदान है, उनका जो दान है, उसको हम समझ नहीं पाते। पार्थिव चीजों से हम उसको मापना और तौलना चाहते हैं। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो गुरु जी की दी हुई जो चीज है उससे कोई भी संसार की तुलना हो सके। भगवान की जितनी करुणा है वो सब एकत्रित होकर के मूर्ति के रूप में गुरु जी हैं, इसी को समझो। इसलिए गुरु भगवान को यदि करुणा भी करनी होती है तो गुरु के माध्यम से ही करते हैं, वैष्णवों के माध्यम से करते हैं, भक्तों के माध्यम से करते हैं, खुद नहीं करते, मर्यादा नष्ट नहीं करते हैं। अभी हम लोग गुरु तत्व के संबंध में विभिन्न वैष्णवों से हम लोग सुनेंगे, एक ही तरह के विचार ठीक नहीं होते। थाली में तरह तरह की चीजें होंगी ना तो उसका आस्वादन रहता बढ़ता है, खट्टा मीठा चटपटा तीता मधुर अम्ल, अम्ल में भी तरह तरह के, मीठा में भी तरह तरह का। तो पहले हमारे श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी जी आपको गुरु तत्व के संबंध में नित्यानंद प्रभु जी ने व्यास पूजा की, उन्होंने गौड़िया वैष्णव में सबसे पहले नित्यानंद प्रभु जी को व्यास पूजा करने के लिए महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु जी व्यास पूजा करने चाहिए। शिवाज जी के आंगन में व्यास पूजा हो रही थी, सब लोग कह रहे हैं कि व्यास पूजा कीजिए उनके लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए। किंतु वो नहीं कर रहे, हूं कर रहे। या महाप्रभु आए तो उनके गले में माला डाल दी, तो इसका वो तात्पर्य बतला रहा है और ऐसा ही तात्पर्य है। नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी के गले में क्यों डाल दिया? व्यास पूजा हो रही है, व्यास जी की पूजा हो रही है और व्यास जी अखंड एक तरह से गुरु हैं, भगवान भी हैं, और वही महाप्रभु जी कहे तुम व्यास पूजा करो, तो उन्होंने महाप्रभु जी के गले में डाल दी माला। क्यों डाल दी? व्यास का कर्तव्य भगवान की पूजा करना है, इस चीज को समझो। व्यास क्या करता है, गुरु क्या करेगा? कृष्ण की पूजा कराएगा, करेगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी अखंड गुरु तत्व होने पर भी उन्होंने व्यास की पूजा नहीं करके व्यास के जो मूल व्यास हैं उनके भी गुरु हैं, मूल केंद्र बिंदु है वो कृष्ण स्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु की पूजा की। इसके द्वारा कोटि कोटि व्यास और कोटि कोटि सब गुरु और सबकी पूजा हो गई, ये चीज उनको दिखलाना। गुरु अपनी पूजा ग्रहण करने के बदले क्या करता है? भगवान की पूजा करता है और कराता है, एक चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो लोग अपने पूजा में प्रतिष्ठा में लगे हुए गुरु है ही नहीं है, गुरु तत्व से वो च्युत है। इसलिए व्यास जी को कहिए, नित्यानंद प्रभु जी को कहिए, बलदेव जी को कहिए, ये सब कृष्ण की पूजा कर, महाप्रभु जी की पूजा करते हैं, यही व्यास पूजा का मूल रहस्य। व्यास जी के हम ऋणी इसलिए हैं कि कृष्ण को उन्होंने जनाया, कृष्ण की सेवा को इस जगत में दिया, इसलिए वो पूज्य है। गुरु जी के संबंध में दो एक बातें मैं बताता हूं, इसके बाद में फिर ये लोग कहेंगे। अभी गुरु जी के बाल्य चरित्र के संबंध में इसने टच किया, शायद लोग समझे कि नहीं, इसलिए फिर से उसको मैं बतला रहा हूं। गुरु जी महाराज जी 12-14 वर्ष की उम्र में या 15 वर्ष की उम्र में जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय इनके पिताजी देखभाल नहीं लोगों का बच्चों का करते थे, इनके इनकी मैया देखती थी। मैया जमींदार की लड़की थी, बड़ी शासन करती थी, बच्चे अच्छे निकले, इसलिए वो कहती थी शाम के बाद में कोई भी घर से बाहर नहीं रहेगा, शाम के पहले होते ही सब लोग घर आ जाएंगे, इधर उधर ना घूमे। एक दिन गुरुजी को उन्होंने देखा, जैसे ये रात में 8-9-10 बजे आए, बस लठिया लेकर के दरवाजे पर खड़ी थी, आएगा तो वही उससे हम पूछेंगे कहां था तू। जब घर में आए उनका हाथ पकड़ लिया और लठिया उठा लिया हाथ से, मालूम अभी तक तू कहां था बतला। तो गुरु जी निर्भय होकर के चुपचाप खड़े रहे, उत्तर कुछ नहीं दिया। तो उनकी शंका और हो गई, जब बोल नहीं रहा था जरूर कुछ गड़बड़ है, जब जल्दी बतला मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी, तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी, फिर कभी तुमने ऐसा नहीं करे। तो जब बार बार पूछने लगी तब उन्होंने बतलाया, क्यों बतलाया, पहले क्यों नहीं बतला दिया। देखा कि अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति क्षण क्षण में मरता है, इसलिए नहीं बतलाया। मैया कहने जाए तो मैया तू हमें मार ले, मैं इसलिए मैं रुक गया रात में कि पास ही में एक गरीब विधवा है, उसको कपड़े खाने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए और कपड़े नहीं है, 4 दिनों से कुछ नहीं मिला उसको खाने के लिए। हमको पता लगा दिन में जो वो बुढ़िया कुछ नहीं खाया, उसके पास में कुछ कपड़े नहीं है और ऊपर से वो रोगी हो गई है, बीमार हो गई है, इसलिए मैं गया उसके पास में, देखा जैसे उसके पास में कुछ खाने के लिए नहीं है, 4 दिन तक खाया नहीं और बड़ी बीमार है। मैया मैं क्या करूं, वो हमारे तुमने जो पैसे इतने दिन दिए थे वो मैं संग्रह करके रखा था और मोहल्ले से जाकर के अच्छे अच्छे लोगों से भीख मांगा मैंने, तो कुछ अन्न चावल और कुछ खाने के लिए संग्रह कर दिया और 2 कपड़े किसी से मांग करके मैं उसकी व्यवस्था करने में लग गया, नहीं तो आजकल मैं वो बूढ़ी मर जाती। सुनते ही मैया का लाठी गिर गया हाथ से, आंख से आंसू आ गए और बच्चे को गोद में ले लिया। फिर कभी उनको शासन नहीं किया और भाइयों को शासन किया नहीं किया। बचपन से ही साधु संतों में दया होनी चाहिए, जिसका हृदय दिन दुखियों को देख करके नहीं पिघलता वो बड़े होकर के क्या पिघलेगा। गुरु का भी यही लक्षण है, जब देखते हैं कि भगवान को भूल करके ये जगत के जीव बड़े दुखी हुए हैं, जन्म जन्मांतर से माया के चक्कर में पड़ रहे हैं, इसलिए उनका हृदय द्रवित हो जाता है और उनको लिए सर्वस्व उनका सब समय उसी में जाता है। एक समय जब गुरुजी के पास में ये आए तो गुरुजी के पास में चिट्ठी आई, ये तुम्हारी मैया बहुत बीमार है और पत्र दिया है तुम्हारी मैया ने, जे बेटा विनोद तुम एक बार चले आओ, अंतिम बार तुम्हारा दर्शन कर ले। तो ये नहीं गए तो गुरुजी के पास में कहा, जे आप उनके गुरु हैं, मैं अंतिम में सांस गिन रही हूं, आएगा तो मैं साथ ही साथ सांस छोड़ करके चली जाऊंगी, उसी के लिए रुकी हूं, आप उसको कुछ समय के लिए 1 दिन के लिए भी हमसे भेंट करके जाए आप भेज दीजिए। गुरुजी ने इनको बुलाया, विनोद सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी मैया का पत्र आया है, तुमको अभी तुरंत जाना चाहिए घर, चले जाओ। उन्होंने बतला दिया तुम्हारी मैया बहुत बीमार है और एक बात देखना चाहती, ये जाओ अभी अभी तैयार होकर अभी चले जाओ। तो वो वहां से चले आए और एक घर में छिप रहे,
गए नहीं। शाम जब हो गई, आतिश हो गई, अंधकार हो गया, तो प्रभुपाद जी ने परमानंद ब्रह्मचारी जी से, अपने प्रिय एक और शिष्य थे, उनसे कहा, देखो तो भाई विनोद कहीं, विनोद को कहा था घर जाने के लिए, उसकी मैया बीमार है, वो गया कि नहीं जरा पता लगा लो। तो वो जाकर के कहा, यार वो तो घर में बैठा हुआ है, अंधकार घर में, कोने में, दीवार के तरफ में, उसका मुख इधर में पीठ के हुए और बैठा है, कहे जाओ उसको बुला लो। मुश्किल से बुला करके उनको लाया गया गुरुजी के पास में। अरे तू गया नहीं, हमने कहा था जाओ मैया से भेंट कराओ। तो उन्होंने कहा, जे प्रभु आपने तो आदेश दिया मुझे जाने के लिए, कोटि कोटि जन्मों के बाद में मैं आपके श्री चरणों में आया, कोटि कोटि जन्मों के बाद में आया हूं और आपके श्री चरण कमल मिले हैं, अभी मैं घर में जाऊं मैया के पास में, अभी जाऊं मैया के पास में। और मैया भी बहुत स्नेह करती थी और वो कहेगी जाते जाते, बेटा मैं तो मर रही हूं, मेरी बात रखना, अंतिम बात रख देना, तुम्हारे भाई लोग भी वैसे हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तुमसे बड़े हैं कुछ नहीं जानते हैं, और तुम ही सब कुछ जानता, तुम जमींदारी को देखना और शादी करके घर में रहना, घर को संभालना, नहीं तो ये घर हमारा बर्बाद हो जाएगा। यदि मैया कहेगी तो उसकी अंतिम बात हमको जरूर माननी पड़ेगी, तो आपके चरणों से सदा के लिए मैं विजुक्त हो जाऊंगा और आपकी सेवा से छुटकारा मिल जाएगा। ये संसार तो, ये संसार बार बार आता है, बार बार जाता है, कोटि कोटि बार में बच्चा हुआ हूं, लड़का हुआ, पिता हुआ हूं, सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं नहीं गया। अब आपको जो कुछ है आप मुझे दंड दीजिए, यदि बुरा किया है तो आप रखिए। तो प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ गए, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मौन हो गए, कोई कुछ शब्द ही नहीं बोले। बात ठीक है कि गलत है, संसारिक दृष्टि से ये तो ठीक मालूम पड़ता है जी, घर में जाओ मैया मर रही है, जाओ देखो, किंतु परमार्थिक दृष्टि से ये देखने से ये मालूम पड़ता है कोटि कोटि जन्मों के बाद में हम लोग आए, गुरु से बढ़कर के और कोई बंधु नहीं है। आज वो घर में चले गए होते हमारे गुरु जी तो आज हम लोगों का किसी का जन्म हुआ होता, कोई भी जो हजारों लाखों आदमी है आज क्या होता, कोई भी नहीं आता। इसलिए ये लोग परिकर हैं भगवान के चरणों के। साधारण नहीं है, इनके एक एक जीवन का एक एक आदर्श है। एक समय प्रभुपाद जी ने इनसे कहा, एक व्यक्ति था वहां उन प्रभुपाद जी का शिष्य, वो प्रभुपाद जी ने उसको उत्साह देने के लिए कहा, ये तुम्हारे जैसे इस मायापुर में कोई भी गुरु सेवक या वैष्णव नहीं है, तुम पक्का वैष्णव है और तुम बहुत सेवा करते हो। उसको दिया उत्साह करने के लिए, वो आदमी ठीक नहीं था, सेवा नहीं करता था, किंतु उत्साह देने के लिए ऐसा कह दिया। अब वो चिट्ठी लेकर के अभिमान में फूल गया और सोचा कि सचमुच में मायापुर में कोई भी वैष्णव नहीं है, मैं ही, यदि वैष्णव हूं तो मैं। नरहरि प्रभु, विनोद ब्रह्मचारी जी और सब जितने लोग यहां हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, इसलिए सबकी निंदा करना आरंभ कर दिया। प्रभुखाने जी सबकी निंदा करने लगा, हमने कब निवारण करने के लिए पिपिल्ली का खंड मैंने मंगाया,
पिपली खंड कफ निवारण
के, कफ को दूर करने के लिए एक औषधि होती है कविराज, तो उसको लिया तो ये कफ और बढ़ गया उल्टा। महाप्रभु जी ने भी ऐसा ही किया, वो मैं ही संसार में आया संसार का कफ रोग दूर कर करके भगवान की सेवा में सबको लगाने के लिए, और ये अपराध से आज हम ही को मैं सर्वेश्वर भगवान हूँ और हमारी निंदा कर रहे हैं और हमको मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये इनको मारेंगे, प्लान बना रहे हैं तो ये और मारेंगे, इसलिए संन्यास ले लिया। प्रभुपाद जी ने कहा जैसे नारायण बांस न बजे बांसुरी, ये महापराधी है, ये किसी को वैष्णव नहीं मानता है। अच्छा ठीक है विनोद, सुनो सुनो सुनो, अभी इसको घर से बाहर कर दो, इसका सारा सामान जितना है बैलगाड़ी पर रख करके इसको बाहर कर दो, गुरु जी को प्रणाम करके, और हमारे गुरु जी चले आए और आकर के कहीं छिप गए, छिप गए, शाम हो गई। सुनो सुनो, दूसरे को बुलाए, देखो तो वो आदमी को विनोद को मैंने कहा था जो तो उसको निकाल दे, वो वैसा ही है, वो कभी नहीं निकालेगा। देखो तो वो निकाला कि नहीं, वो गया कि नहीं, तो देखा जैसे उसको नहीं निकाला गया है, वो तो वहां पर है। कहा जैसे एक दूसरे को बुलाया, अभी हम कहते हैं उसको निकाल दो जाओ। उन्होंने गाड़ी लिया और उसका सब सामान रख करके और उसको कहा जल्दी से बैठो ना तो पीटेंगे तुमको। दो चार आदमी मिल करके उसको जबरदस्ती गाड़ी पे बैठा करके उसका माल साथ हटा करके उसको मठ से निकाल दिया। गुरु जी को दूसरे दिन प्रभुपाद जी बुलाए, तुमको मैंने कहा था जो उसको निकाल दिया, निकाला क्यों नहीं? गुरु जी हाथ जोड़ के बोले आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आज कह रहे हैं निकालने के लिए, आपने कहा क्यों निकाला? आप तो बड़े दयालु गुरु हैं ना, भगवान की सारी करुणा आप में है। अच्छा आप ही बतलाइए आपने उसको क्यों निकाला? सचमुच में आप में दया नहीं थी, निष्ठुर होकर के उसको निकाल दिया? गुरु कोई ऐसा कर सकता है? वो केवल विशेष बाध्य होकर के इसलिए किया है, हाथ सड़ रहा है, गैंगरी होने की संभावना हो गई, हाथ नहीं यदि काटा गया तो ये मर जाएगा, सारे अंगों में फैल जाएगा, सबका सबका सुधार हो सकता है, किंतु वैष्णव अपराधी का सुधार होना बड़ा भारी कठिन है, किंतु उसके लिए भी गुरु बहुत प्रतीक्षा करते हैं, साजी नहीं करते हैं। एक समय में ये दूसरी दया का एक बतलाता हूं, हमारे मठ में पूज्य पाद बामन महाराज जी के एक चाचा जी थे, जेठा, उनका नाम था नरसिंह महाराज, भक्ति कुशल नरसिंह महाराज। नरसिंह महाराज जी समझिए जैसे कैसे थे, नरसिंह का अवतार, उनको लोग देखने के लिए आते जो सचमुच नरसिंह जी के बड़े सुंदर शांत और बड़े अच्छे थे। तो वो थोड़े किंतु बड़े तेजी आदमी थे। एक समय में किसी ने कुछ गड़बड़ किया, एक नया शिष्य आया और नया शिष्य बना और वो कुछ काम नहीं कर पाया, कोई सेवा टेवा कुछ नहीं, वही हरिनाम करता और ऐसे ही बैठा रहता। तो कुछ बात ऐसी हो गई, नृसिंह महाराज ने कहा जो अभी तुम निकलो यहां से, आश्रम से निकल जाओ, और उसको निकाल दिया। वो गेट पर खड़ा हो गया अपना सामान लेकर के और वहीं पर रोने लगा। तो गुरुजी को किसी ने कह दिया जैसे वो एक आदमी को नृसिंह महाराज ने निकाल दिया और वो गेट पर रो रहा है, तो उन्होंने नृसिंह महाराज जी को बुलाया। दोनों की उम्र एक ही थी, किंतु नृसिंह जी महाराज जी गुरु महाराज को गुरु तुल्य मानते थे, अब बड़े कड़े आदमी, राप सा भीतर में एक और बाहर में एक, ऐसा नहीं वैष्णव का जैसा चरित्र होना चाहिए, ऐसे अंतर बाहिर सम व्यवहार, अमानी मानो दह, ऐसा उनका व्यवहार, कड़े तो जरूर थे किंतु कोमल भी थे। उन्होंने गुरु जी ने उनको बुलाया और कहा देखिए आप सब लोगों ने मिलकर के मुझे आचार्य बनाया है, आप सब कुछ कीजिए, सारी व्यवस्था सब कुछ आप लोग करेंगे, बस एक चीज हमारे अधीन रहने दीजिए, किसी को बाहर करना हो इसमें मेरी राय लेकर के करेंगे, और सब काम आप सब करें, सब कुछ कीजिए, किंतु किसी को यदि बाहर करना है तो हमसे पूछ करके, हमारी राय लेकर के तब कुछ करें। क्यों? बड़े दयालु होते हैं, थोड़ी सी बात के लिए किसी को हरि भजन से छुटकारा देना ये कर्तव्य नहीं, साधारण आदमी इसको नहीं समझ सकता। जब इस पर विचार करेंगे, गौर करेंगे, देखेंगे, तब समझेंगे जिसका क्या मत। उसका यदि निकाल दिया, एक चोरी चोर करता है, जैसे एक बिच्छू है पानी में बह रहा है, एक साधु उसको उठाता है और वो डंक मारता है और वो हाथ से बिच्छू गिर जाता है, थोड़ी देर के बाद में फिर उसको हाथ में उठाया, फिर डंक मारा, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर गिरा, तो उसका साथी साधु कहता है, अरे क्या कर रहा है, तुमको बार बार डसता है, काटता है और तुम उसको फिर लेता है। कहिए क्या करूं, ये अपने आदत से लाचार है, मैं भी अपने आदत से लाचार है, ये काटना इसका काम है, ये इसे बाज नहीं आता और हमारी रक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिए मैं कैसे इसको छोड़ दूं। ऐसे साधुओं का स्वभाव, यदि अपराध के अतिरिक्त और जैसा कोई पाप कर्म इत्यादि है, कोई दुष्टता है, तो सहज ही उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि और भी डूब जाएगा। इसलिए गुरु बड़े दयालु होते हैं। बड़े सिंह विक्रम थे गुरु जी, किंतु दयालु इतने, यदि कोई कृष्ण कथा सुनने या प्रभुपाद का गुण गाने का लगते तो हाँ प्रभुपाद का करके ऐसे रोने लगते जो कोई वर्णन नहीं कर पाते थे, और उस समय में इतने जोर से रोने लगते जो हम लोगों को इशारे से कहते, मैंने तुम कुछ कहो, तब हम लोग कुछ कहते थे, ऐसे वो दयालु। प्रभुपाद जी का इतना गुणगान गुरु जी का करते, नवदीप परिक्रमा के समय में मायापुर जाने के बाद प्रभुपाद की समाधि में अद्भुत उनका जीवन चरित्र देखा। ऐसे ही उनके जीवन चरित्र में बहुत सी छोटी छोटी बातों में भी अपूर्व सब सिद्धांत उसमें लगे, उनकी बातों में, उनकी लेखनी, लेखनी कहते हैं, आज विरह मांग जब गौड़ीय पत्रिका निकली ने पहली बार, तो उसमें विरह मांगल्य सबसे पहला लेख लिखा। यदि कोई सहृदय व्यक्ति होगा, सहृदय आंखों से जरूर आंखें द्रवित हो जाएंगी, हृदय द्रवित हो जाए, आज विरह मांगल्य लिखते हुए मेरी लेखनी कांप रही है,
कंपित पद कंपित मृदु पद अग्रसर है,
मंथर गति से कांपती हुई अग्रसर हो रही है, हृदय भी कैसा हो रहा है, हृदय भी कांप रहा है, कंपित हो रहा है, आज लिखनी बढ़ नहीं गई, जैसे बोलते समय में एकदम गला रुद्ध हो जाता, बोल नहीं पाते, ऐसी लेखनी भी लिखते समय में ऐसी बात। प्रभुपाद का गुण व्याख्या कर रहे हैं, प्रभुपाद कितने बड़े हैं, है कृष्ण लीला के परम मुक्त शिरोमणि, राधा जी की सखी नयन मंजरी है, नयन मंजरी मैंने क्या, राधा जी की नयन की शोभा है, और अनुग्रह करके इस जगत में आकर के संन्यास लेकर के त्रिदंडी स्वामी, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम लिया, लोग अत्यारे अपना नाम इसने संन्यास का रख करके परमहंस परिवर्त का आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसा कहता है ना? ये तो दाम्भिक है, लोग कहते जैसे कि सावड़ी के सहजिया लोग कहते, अरे ये ऐसा परमहंस, ये अपने नाम के आगे ये अपने शिष्यों को कहता परमहंस कुल चूड़ा मनी,
तो गुरु जी कहते हैं कि ये लोग दया के पात्र हैं, मूर्ख है। क्यों है, कहां के ये, कहां ब्रज के गोलोक के भी अंतर सीमा, गोलोक का भी जो सार है वृंदावन, वहां पर राधिका जी की सहेली, और कैसी सहेली, उनकी राधा जी की नैन मंजरी हैं, और वो दैन्य करके उस जगत से इस जगत में मर्त जगत में उतर करके अपने को दीनता से परमहंस कह रहे हैं, परमहंस साधक कह रहे हैं, परमहंस। जैसे राष्ट्रपति वेश बदल करके गांव में घूमकर कहता मैं चपरासी हूं या
चौकीदार,
यदि राष्ट्रपति कहता है कि मैं चौकीदार हूं तो ये खूब प्रशंसा की बात है, न कि दीनता की बात है राष्ट्रपति। ऐसे ही स्वयं ये नैन मंजरी उस जगत के नित्य मुक्त होकर के राधा जी की प्रधान सहेली होकर के यदि परमहंस कह दिया तो ये बहुत नीचे की बात कही। इसे लोग नहीं समझते हैं, गुरु जी की महिमा में एक बतला रहे हैं, हमारे जी गुरु जी कैसे हैं, कैसे हमारे गुरु जी? ऐसे गुरु हैं, दूसरों का थोड़ा सा भी यदि देखते हैं कि दोष है, थोड़ा भी दोष कहीं किसी के अंदर नहीं, साथ ही साथ में सुधार करने के लिए शासन करते हैं, बिना शासन के उसके ये दुर्गुण नहीं जाएंगे, इसलिए शासन करते हैं। ये दया का परिचय है, नहीं चाहते हैं कि उसके अंदर में कोई भी दोष रह जाए, तनिक भी रह जाए। ये क्या चीज है, ये दलता दयालुता है, किंतु साधारण शिष्य नहीं समझता है। ये किसका दोष है, गुरु जी का दोष है न शिष्य का दोष है? गुरु जी ने क्या शासन किया, अभी थोड़ा सा ठहर जाओ, दीक्षा अभी 2 दिन के बाद होगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको दिखलाता हूं, क्या दिखलाता हूं, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, कहां जाएगा, घर जाएगा, क्या करेगा, अब बाल बच्चे के साथ में रहेंगे, क्या करेगा, वहां लठिया खाएंगे अपनी स्त्री का पुत्र का। वाह, गुरु जी को कितनी बड़ी भारी सजा दे दी, गया कहां, गुरु जी की दया नहीं समझते हैं। गुरु जी चाहते हैं कि सब लोग निष्पाप निष्कलन, कोई भी दाग न रहे हृदय में कहीं, नहीं तो कृष्ण भक्ति इतनी बड़ी भारी चीज है, ये कैसे होगी। यदि सुदामा और कृष्ण गुरु जी से कहते गुरु जी हम आपकी स्त्री की बात नहीं मानेंगे, ये सर्दी का दिन वर्षा हो रही है और उसमें आधी रात के समय में आप हमको लकड़ी, अब मैं आपका लकड़ी बिनने वाला कोई नौकर थोड़े हूं, अरे मैं वासुदेव का लड़का, वसुदेव जी का लड़का, राजा का लड़का हूं, मैं ऐसा नहीं करता। कृष्ण ने कहा क्यों नहीं कहा, गुरु जी देख रहे हैं कि इसका अभिमान जो राजा कुल में होने का है, धन का बड़प्पन, ये सब अभिमान दूर हो जाए, तृणादपि सुनीच हो जाए, इसलिए कभी कभी गुरु शासन करता है, किंतु शिष्य इस चीज को समझ नहीं पाता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं अपने गुरु के लिए, हमारे गुरु जी ऐसे कोमल स्वभाव के हैं, ये अपने शिष्यों का थोड़ा सा भी कोई दोष देकर के, भक्ति विरोधी बात देकर के, उसको शासन करके उस चीज को साथ ही साथ में दूर करना चाहते हैं। और कैसे हैं, यदि थोड़ा सा भी गुण देखते हैं तो लाख जीवाओं से उसको वर्णन करते हुए थकते नहीं है। थोड़ा सा भी गुण देख लिया, शास्त्र जीवाओं से उसका गुण वर्णन करते हैं, आ देखो तो कैसा सुंदर लड़का, कैसा, हम लोगों ने इसका अनुभव किया है। एक बार मैं 5 रुपया भिक्षा करके सवेरे निकला घर से, मठ से, चुचुड़ा मठ से, और वहां से 30-40 मील दूर, वहां से नई हाटी पार करके, हाँ उधर हाली शहर को पार होते हुए कचरा पड़ा इत्यादि, सवेरे से घूमते घामते घूमते घूमते शाम हो गई, 5 रुपया भिक्षा मिला। पहले मैं था क्या, आप लोगों ने सुना होगा, जब पहले कैसे पोस्ट पर था,
और हमको ऐसा भिखारी बना दिया, सवेरे से चल रहा है काम और शाम तक 5 रुपया। और गुरु जी के चरणों में जब दिया तो अत्यंत प्रसन्न से एकदम, आज तक हमको इतना किसी ने नहीं दिया, आज इतना भिक्षा तुमको कहां से मिली, कैसे ले आए? मैं कृतार्थ हो गया। उसमें 5 रुपए में हमारा 4 आना या 2 आना कम था, तो हमने त्रिविक्रम महाराज जी से या बावन महाराज जी से 4 आना उधार लिया और उधार लेकर के उसको पूरा किया।
गुरुमान जी हम लोग कहा था
तो बावन महाराज जी से धार दिया उधार और लेकर के पूरा करके गुरु जी को दिया।
कितने खुशी गुरुमान
जी, और गुरु महाराज जी 5 रुपया भिक्षा, 5 रुपए में 1 महीना पूरे मठ का उस समय खर्चा चल जाता था। बतलाओ तो उनके लिए 5 रुपया क्या चीज है, मेरे लिए ही 5 रुपया क्या चीज थी उस समय, किंतु कितने उत्साह देते हैं। एक समय में आसाम का एक लड़का था, उसका नाम था अनंग मोहन ब्रह्मचारी। सचमुच में अनंग ही था, बड़ा सुंदर सुना, बहुत ही खूबसूरत लड़का था, किंतु उसको टीबी हो गई। वो बहुत सुंदर मृदंग बजाता था और बहुत सुंदर कीर्तन करता था। गुरु जी उसको बहुत प्यार करते थे, गुरु जी का सब रसोई बनाना, उनका कपड़ा धोना टोना सब सेवा करता था, उनका बिस्तरा लगा देना, मुसहरी लगा देना, खोलना साड़ना सब काम। तो वो जब बीमार पड़ गया तो सब लोग मठ के जितने हैं उसको घृणा करने लगे, जैसे ये तो इसके साथ रहने से हमको रोग हो जाएगा, किंतु गुरु महाराज जी ने उसको नहीं छोड़ा। उसके लिए उस समय में भी अब कितना रुपया खर्चा किया मैं नहीं जानता, तो उनके गुरु भाइयों ने उन पर इल्जाम लगाया, जैसे ये सब जो भिक्षा करके हम लोग लाते हैं आप लाते हैं, ये सब इसी के लिए खर्च कर देते हैं। खर्चे सचमुच उन्होंने किया। अब बड़े वैसे थे आदमी, गंभीर आदमी, तो उसकी चिकित्सा के लिए मुझको मद्रास में भेजा। तो मद्रास से जबकि उस वहीं पर हरिनाम करते हुए कृष्णा मुझे बुला रहे हैं, राधा जी वृंदावन में मुझे बुला रहे हैं, और ऐसे करते 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 चला गया। अद्भुत उस समय देखा, मैंने रियलाइज किया यह सचमुच में साधारण व्यक्ति नहीं था। यदि अजामिल एक नारायण नाम वो भी अपने लड़के के लिए कहा और यह सचमुच में करा, जैसे राधा कृष्ण हमको वृंदावन में बुला रहे हैं और हा कृष्ण हा राधे कर रहा है, हा महाप्रभु कर रहा है, गुरु जी को कहता चाह बाबा बाबा कर रहा है, उनका फोटो हमने उसके इसमें रख दिया, दिव्य चेहरा हो गया। डॉक्टर लोग नहीं समझ सके जी ये कैसे ये जा रहा है, इसमें तो बोलने की बात नहीं है, तो ये बोल कैसे रहा। तो उस समय मैंने उसके चरणों में निवेदन किया, ये प्रभु आपको जा रहे हैं वृंदावन, आप वृंदावनेश्वरी और वृंदावन ईश्वर को आप मेरे लिए निवेदन करेंगे, गुरु जी से भी निवेदन करेंगे, मुझ पर भी दया करके वहां पर बुलाए, उनकी भक्ति अंततः हो, उनके प्रति भक्ति में हमारा आदर हो, ये तो हमसे प्राप्त। और कहते हा राधे हा कृष्ण कहते, तो मैंने गुरु जी को दिखाया, परिक्रमा हो रही थी नवदीप धाम की, है? परिक्रमा हो रही थी, कम से कम तो 20,000 लोग आए हुए थे और गुरु महाराज जी का भाषण देने का था, सब कीर्तन उत्तम हो रहा था और भाषण देंगे। इतने में बाम महाराज जी ने हमारा पत्र लेकर के गुरु जी के हाथ में दिया, मद्रास से लिखा था, मैंने लिखा जी आपने हमको जो थाती दी मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका, मैं पात्र आदमी, आज वो इस तरह से आपका चित्र यहां पर रखा मैंने, और कृष्ण कृष्ण कहते हुए हा राधे हा कृष्ण कहते हुए, और हे राधा मुझे राधा और कृष्ण बुला रहे हैं, ऐसे कहते हुए वो इस धराधाम से अपने प्रभु के पास नहीं चले, मैं नहीं रख सका, मैं लज्जा से अपना मुख आपको दिखाने लायक नहीं। गुरु जी पत्र पढ़ रहे हैं और रोक नहीं सके, सब हजारों लोगों के सामने एकदम फुट फुट करके रोने लगे। कितने भक्त वात्सल्य हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। ये अनुभूतियां हैं जिनकी कृपा से एक साधारण व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं और हा राधे हा कृष्ण हमको बुला रहे हैं अंतिम समय में, ये कितनी बड़ी बात, उसकी क्या गति हुई होगी यदि आज आमिल की ऐसी गति है। हमने अपना जीवन कृतार्थ समझा, ये हमारा जीवन आज कृतार्थ है, ऐसे महापुरुषों की सेवा करें, ये सब गुरु सेवक है। इसलिए आज जो कुछ हम बोलते हैं सुनते हैं विचार करते हैं बस ये गुरु कृपा है और वैष्णव की सेवा से है। ऐसे गुरु के प्रति हम लोग की दृढ़ निष्ठा, यही भक्ति का मूल कारण है। कितने ऐसे ऐसे सब हैं हृदय में सब गुथे हुए हैं माला की भांति, गुरु की महिमा हम कितना वर्णन करें। अब अभी समय भी हो चुका है, अभी दो चार बच्चे भी पांच पांच मिनट बोलेंगे, अब आप लोगों को जाने का समय हो गया है, इसलिए आप लोग जाइए, और नहीं तो हम लोग भी अब कीर्तन करके नहीं समाप्त करना है तो दो दो मिनट बोलेंगे, आप जाइए जिनको जाना है। अभी ब्रह्मचारी लोग दो मिनट पांच मिनट अपनी पुष्पांजलि अर्पण करेंगे, इसके बाद हम लोग जिनको जाना है आप लोग।
आज सर्वाग्रे अमर गुरु पाद पद्म रंगे
अमर अनंत कोटि नमस्कार
धन्यवाद। आविर्भाव तिथि एवं जन्म दिवस के मध्य विस्तार पार्थक्य, जन्म दिवस जन्म जन्म मृत्यु चक्र से जड़ित, किंतु आविर्भाव तिथि स्वतंत्रता निर्देश, किंतु श्रीकृष्ण आविर्भाव एवं जन्म दिवस दुईटी आछे। আবির্ভাব বলতে দেবকী গর্ভ থেকে চতুর্ভুজরূপে জগতের আবির্ভূত হলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস বলতে সাধারণভাবে নরবর যেভাবে জন্মগ্রহণ কার্যটি হয় সেইভাবে জন্মটি হওয়ার কারণে সেখানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস বলা হয়। বর্তমানে সাধারণভাবে আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের ক্ষেত্রে সেইরূপ ভাবে জন্মধন লীলাকে আমরা দেখি, তবে কি সেখানে আমরা আবির্ভাব দিবসের বদলে জন্ম দিবস কথাটি বিযুক্ত করাই কি উপযুক্ত হবে হবে নাকি? কিন্তু সমগ্র জায়গায় তো গুরু বৈষ্ণবগণে আবির্ভাব দিবসটিকে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ সম্ভবত এইরূপ। মা যশোদা এবং নন্দ বাবা তারা শ্রীকৃষ্ণের পরিকর, নিত্য পরিকর, এবং মাতৃপিতৃ ভূমিকা এটা নিত্য পরিকর। কিন্তু গুরু বৈষ্ণবগণ সাধারণভাবে মাতৃ বদ্ধজীব উদ্ধার করতে কাজটি আসেন, সেখানে তারা যে পিতৃমাতৃকে যারা বরণ করেন তাদেরকে নিত্য পরিকর বলা যায় কিনা আমি সন্দেহ প্রকাশ করি। কারণ হিরণ্যকশিপুকে দেখা যায় প্রহ্লাদ মহারাজের পিতৃদেব, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তিনি নিঃসিংহদেবের পরিকর, হিরণ্যকশিপু তিনি জয় বিজয় রূপে শ্রীমান নারায়ণের পরিকর। সুতরাং স্বরূপে তাদের একত্র অবস্থান নেই, কিন্তু তথাপি লীলার খাতিরে এমন একটি সামঞ্জস্য ভগবান অচিন্ত শক্তি প্রভাবে হয়েই থাকে। আমাদের জীব বদ্ধ জীবনকে উদ্ধার নিমিত্তে তাদের যে অবতরণ সেইটিকে নৈমিত্তিক লীলা বলা যায়, তার কারণ নিত্য লীলা প্রবিষ্ট এই কথাটির দ্বারা তাদের এই সেই উদ্ধার করুন লীলাটিকে নৈমিত্তিক লীলা বলতে। সুতরাং সেই নৈমিত্তিক লীলার খাতিরে তারা সাধারণত যে সমস্ত পিতৃমাতৃ বরণ যে কার্যটি সেইটিকে জন্মদিবস বলে ব্যাখ্যা করা যায় না, সেটিকে আবির্ভাব বলাই যুক্তিসঙ্গত। শ্রী ব্যাস পূজায় আমরা শ্রীমন মহারাজ এবং পূর্বপূর্ব বক্তাগণের মুখে শুনেছি যে নিত্যানন্দ প্রভু সেই ব্যাস পূজার মূলভূত দাতা, এবং সেখানে নিত্যানন্দ স্বরূপে শ্রী শ্রী গুরু পাদপদ্মের যে দুইটি বিশেষ ক্রিয়া সেটি হচ্ছে বাসন্ত দলন এবং প্রেম প্রচার। বাসন্ত দলন আর প্রেম প্রচারণ এই দুই কার্যে অবদূত করেন ভ্রমণ। সুতরাং ব্যাস বিস্তার যে কার্যটি সেখানে একদিকে বাসন্ত দলন কার্যটি আছে, অপরদিকে প্রেম প্রচারণ কার্যটি আছে, দুইটি যুগপথ চলছে। বাসন্ত দলন কার্যটি ছিল ভক্তি পরিমাণ কৃষ্ণ মহারাজের বাসন্ত বাসন্ত দলন ইলাকে অত্যন্ত বিখ্যাত। তার নিদর্শন স্বরূপে তৎকৃত মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণবীজন এবং অচিন্ত ভেদাভেদ এই দুইটি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুদ্ধ ব্যক্তি জানে তিনি সেই শঙ্কর দর্শনের জন্ম বর্ধন অস্তিত্ব অপক্ষয় মৃত্যু সর্বিকা তিনি দর্শন করিয়াছেন, এবং বর্তমানে বলছেন যে বর্তমানে যে মায়াবাদ সেটি হচ্ছে প্রেতাত্মা, এবং অচিন্ত ভেদাভেদ গ্রন্থে তিনি শুদ্ধ সম্প্রদায় ব্রহ্মমন্ত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিচারটি তিনি স্থাপন করেছেন। কিছু সাহজিক সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মতবাদ সেই সমস্ত মতবাদকে নির্মূল করে তিনি শুদ্ধ বিচার ধারাকে তিনি স্থাপন করেছেন। প্রেম প্রচার কার্যটির নিদর্শন স্বরূপে শ্রী ভক্তি পরিপ্রাণ কৃষ্ণ মহারাজের শ্রী রাধা বিনোদ রাধা বিনোদ বিহারে বিগ্রহের সেবা প্রকাশকে আমরা লক্ষ্য করব। শ্রী রাধা বিনোদ বিহারে সেবা প্রকাশে এমনকি অনেক গৌরী মঠস্থ বৈষ্ণবগণ তার সন্ধিহান সন্ধিহান হন। তার এইরূপ প্রকাশ করে নতুন কিছু করণের ভাগ এর মধ্যে তারা ভক্তি প্রজ্ঞান কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহারাজের রাধা বিনোদ রাধা বিনোদ বিহারি সেবার প্রকাশ থেকে তারা নতুন কিছু করণের এই নবসৃষ্টি বলে তারা পরিহাস করে। কিন্তু এইরূপ বিচার নয়। তাহলে শিলো পুরীতে পুরী পুরী পুরীধাম প্রধান গোবিনাথ যে কৃষ্ণ বর্ণনা রাধা নাম সেটি তো অত্যন্ত প্রাচীন বিগ্রহ, সেইটি কি নতুন কিছু বলে তারা কল্পনা করেন? এই বিচারটিকে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাকে নিরাশ করবার জন্য তিনি রাধা বিনোদ বিহারী তত্ত্বাষ্টকম এটি তিনি রচনা করেছেন। রাধা চিন্তা নিবেশন যশ কান্তি বিরর্পিতা শ্রীকৃষ্ণ চরণাঙ্গে রাধা লিঙ্গিত বিগ্রহ। রাধা রাধা নারী সর্বদা যে বিনোদের মগ্ন থাকেন সেই রাধা বিনোদে বিহার করতে গিয়ে যিনি শিও কান্তি হারিয়েছেন তিনি সেই রাধা বিনোদে বিহার। রাধা ভাবের দুটি সুবলিত যে শ্রীমন মহাপ্রভু যে রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু সেই বিচারটিকে তিনি স্থাপন করতে তিনি রাধা বিনোদ বিহারীকে তিনি প্রকাশ করেছেন। বস্তুত রাধা বিনোদ শ্রীমন মহাপ্রভু যে মূলত তিনি নীলাকল ভারতী বিষয় বিগ্রহ সেই জিনিসটি স্থাপন করতে তিনি বিনোদ বিহারীকে প্রবঞ্চিত করেছেন। এই এইটি হচ্ছে যথার্থ বিচার। এবং সেখানে তিনি অচিন্ত ভেদাভেদের কথা তিনি বলছেন, সেপ্ত সেবক সম্ভবে দয়ের ভেদ কুত ভাবে বিপ্রভেদ সর্বস্ব ভেদ সদা বিবর্ত চিন্তি নামিত নাম তত্ত্বম ভেদাভেদ অচিন্ত কম সত্যি সত্যি মধুরক্ষম যুগপথ বর্ততে সদা। অর্থাৎ এই অভেদত্বকে বজায় রেখেই যুগম কিশোরের বা শক্তি শক্তি মানের ভেদত্ব, আবার ভেদত্বকে বজায় রেখেই তাদের অবেদত্ব। এই বিচারটিকেই তিনি স্পষ্ট রূপে তিনি প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি রাধা বিনোদ বিহারীর সেবা প্রকাশটি করেছেন। অনেকে এইরূপ বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের তো নিত্য স্বয়ং সেখানে শ্রী শ্রীকৃষ্ণের এই গৌরবর্ণ প্রাপ্তি তো সাময়িক, সুতরাং এই প্রকাশটি নিতান্ত অসঙ্গত। কিন্তু এই বিচারটি তত্ত্বান্ধতা জ্ঞাপক সন্দেহ নেই। তাহলে শ্রী জগন্নাথ দেবের বিজয় গণিত বিদ্রোহটি তারা কি সময় বলে কল্পনা করেন? অথবা পুরীর কৃষ্ণবর্ণা রাধা তাকে তারা কি দৃষ্টিতে দেখেন? এই বিচারে রাধা দামোদরে যে দাম বন্ধন বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে তাদের আধ্যাত্মিক বিচার তারা কিরূপ কল্পনা করে? যদি রাধা দামোদরকে বিচারকে যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে রাধা গোবিন্দ, রাধা গোপীনাথ, রাধা মদনম তারা আসলেন কিভাবে? এইরূপ বিচার দ্বারা গৌরী বৈষ্ণব পুত্রটি উপলব্ধি সম্ভব না। বলা চলে সনন্দ্রয়ত্ম যে মদনমোহন গোবিন্দ গোপীনাথ তাদের তাদের সমস্ত এই তিনতত্ত্বের অভিব্যক্তি রাধা রমণে প্রকাশ ঘটেছে বলে গৌরী মনে হইল। সেই যে রাধা রমণের চরম অবস্থায় যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে বিষয় বিনোদ থেকে আশ্রয় বিনোদ সর্বোৎকর্ষ এবং প্রতিগুণের শ্রেষ্ঠ, সেই আশ্রয় বিনোদকে তিনি আস্বাদন বলে যখন সেই ভাবাবিষ্ট হলেন, সেই অবস্থাতে তার যে বর্ণকান্তির যে পরিবর্তন সেইটি হচ্ছে শ্রী রাধা বিনোদ বিহারী। অর্থাৎ রাধা শ্রী রাধা গোবিন্দ, রাধা গোপীনাথ, রাধা শ্যাম সুন্দর যত বিগ্রহগণ আছেন তাদের চরম পর্যায়ে শ্রী রাধা বিনোদ বিহারী, এতে কোন সন্দেহ নেই। এবং এই রাধা বিনোদ বিহারী শ্রী কৃষ্ণপীঠ এবং শ্রী গৌরপীঠ এই দুই পীঠের নিত্য যোগসূত্র, নতমা কিভাবে সেই কৃষ্ণপীঠ এবং গৌরপীঠের সামঞ্জস্য আমরা উপলব্ধি করি? আজ শ্রী রাধা এবং বিহারীর মধ্যস্তরে যিনি নিত্য বিনোদ মঞ্জুরী রূপে অবস্থিত, সেই বিনোদ মঞ্জুরী এই দিনে ছিল ভক্তি, ছিল বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী রূপে তিনি আনন্দিত হন। পরবর্তীতে প্রজ্ঞান ব্রহ্ম প্রজ্ঞান শব্দে যে ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হচ্ছে, সেই প্রজ্ঞান সেই প্রজ্ঞান এবং সেই ভক্তির সামঞ্জস্যটি তিনি স্থাপন করার জন্য ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ রূপে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আজ তার আবির্ভাব হল। সেই তিথি উপলক্ষে তার শ্রীচরণে এবং তার অনুসরণ কার ভক্তবৃন্দের চরণে আমার অনন্ত অনন্ত করে ধন্যবাদ। তোমার আপনাদের চরণে আমার এই নিবেদন, আপনারা প্রার্থনা আপনার এই আগুন ভরে প্রার্থনা করুন যাতে প্রভুপাদের বিচারধারা, প্রভুপাদ যে কারণে তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই জগৎ সেই
কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় প্রদায় কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রতিমত্তচরিত্রায় শ্বাসিতানন্দ নাম প্রেম नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयं परमाराध्यतम नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान के सभी स्वामी महाराज आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में 3 दिन का व्यास पूजा कल वृंदावन में उनके अपरा के जीवन के संबंध में उपदेशों के संबंध में हम लोगों ने कुछ विचार किए। सवेरे ही शाम को आज भी उनके संबंध में कुछ हम लोग विचार करें। आप लोग जानते हैं कि उनका आविर्भाव माघ
शुक्ला तृतीया
तिथि को बंगाल में हुआ था। माता पिता बड़े धार्मिक थे, उनके पूर्वज भी वैष्णव थे, माता पिता परम धार्मिक थे। बचपन का जीवन भी उसी प्रकार से उनका बीता, कुछ अलौकिक उनके जीवन में सब घटनाएं होती थी। परम सुंदर और बड़े साहसी बलवान ये थे बचपन से ही, इसलिए इनका नाम भीम रख दिया। बलवान मोटे ताजे हृष्ट पुष्ट थे, इसलिए भीम, और अत्यंत सुंदर थे इसलिए ज्योत्सना जोना,
और जनार्दन भी नाम
है, जनार्दन भी नाम था। और प्रभुपाद जी ने इनको इनका नाम विनोद बिहारी ब्रह्मचारी में दिया विचार करके। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति थी हम लोगों ने वृंदावन में, ये बताया। होनहार बिरवान के वो तची कने पहले से ही ये पता चलता है ये कैसे व्यक्ति। बचपन में ये लोग चार भाई थे, ये दूसरे नंबर के, पहले नंबर के थे और लौमी महाराज जी, इनका संन्यास का नाम हुआ था, वो बाग बाजार गौड़ीय मठ के आचार्य थे। जैसे गुरु महाराज जी एक समिति वेदांत समिति के आचार्य हैं, वैसे ही आचार्य थे, बड़े भारी विद्वान थे, अंग्रेजी बंगला इत्यादि के थे, बहुत सुंदर भाषण भी देते थे, भक्तिता देते थे, भागवत की व्याख्या खूब सुंदर करते थे, विद्वत पुरुषों में उनका नाम था। और दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर पुलिन बिहारी जी थे, चतुर्थ और एक भाई थे, वो स्वदेशी आंदोलन में राजनीतिक पार्टी के लीडर थे, चारों अगुवा, किंतु चारों में यही सबसे अधिक विचारक थे और माता जी के ऊपर में ये हुए थे, इसलिए माता की इन पर बहुत स्नेह करते, जमींदारी का भाव ये छोटे होने पर भी इन पर सब दिया जाता, माता जी इन पर विश्वास करती थी और इनका विशेष ध्यान रखती थी। पिताजी जहां जाते कोई धर्म सभा होती, गीता का भागवत का पाठ होता है, तो ये जरूर जिद करते जब मैं चलूंगा। इसलिए पिताजी अब इनकी अंगुली पकड़ करके दूर होता तो अपने कंधे पर बैठा करके और ले जाते और इनको वापस सुना देते। बचपन से धर्म की प्रवृत्ति थी, बड़ी दया थी, दयालुता के लिए मैंने बतलाया, कल वहां बतलाया जे कैसे दयालु थी। जब माँ शाम को रात में लठिया लेकर के खड़ी थी, तुम कहाँ गया था बतलाओ, रात हो गई, मैं नहीं चाहता कि तुम 6 बजे के बाद में तुम कहीं बाहर में रहो, शासन करती थी। तो एक दिन उनको पकड़ लिया, वो 10 बजे रात में लौटे, अरे बतलाओ तुम कहाँ गया, वो बतला नहीं रहे थे, मैया और बिगड़ गई, जरूर कुछ गड़बड़ी, कहाँ तुम था, हमारे लड़कों के साथ में घूमता है या क्या करता है। तो उन्होंने मैया को बतलाया पीछे से, भैया मैं गया था, देर हो गई, एक बुढ़िया है यहाँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया, घर में कुछ नहीं है, बीमार पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं, तुमने हमको जो पैसे जोड़ने के लिए दिए थे खाने के लिए मैंने खाया नहीं, और कुछ इकट्ठा किया समाज से जिसको कोई जान न सके, और रात में इसलिए कि कोई देखे नहीं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो लज्जा करेगी, अच्छे घर की लड़की वो है और वो गरीब हो गई है, इसलिए उसको भी निंदा का डर है ना, इसलिए मैं रात में उसके पास में जाकर के उसको खाने के लिए व्यवस्था किया, घर घर से कुछ लेकर के दिया और उसकी दवा की व्यवस्था की, डॉक्टर को दिखलाया और उसको किसी प्रकार से रख करके अपने आया। बस मैया के आंखों से आंसू निकलने लगा और कही अब से तुमको मैं कुछ दिन नहीं डांटूंगी, उन पर विश्वास हो गया। तो ऐसे वो दयालु पिताजी जहां सभा होती वहीं पर इनको ले जाते और यही सब सुनते। यहां तक कि स्कूल में उस समय में बीए क्लास में चैतन्य चरितामृत ये पाठ्य पुस्तक थी। तो एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर लोग चैतन्य चरितामृत के कुछ प्यारों को पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ गलत बतला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे अर्थ नहीं होगा, अपने प्रोफेसरों को उन्होंने समझा करके प्रभुपाद के पास में आए थे, थोड़ा सा संपर्क हो गया था 16 वर्ष की स्थिति में ही प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा लिया, हरिनाम और 2-1 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ कौन सा तत्व, कृष्ण ही अद्वै ज्ञान पर तत्व है, बदंती तत्व विदस्त तत्व, इसी का बंगला प्यार में जो उन्होंने अर्थ किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, कृष्ण ही अद्वै ज्ञान तत्व है और जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। अद्वै ज्ञान पर तत्व किसको कहते हैं और भेदाभेद प्रकाश क्या होता है, तटस्थ शक्ति क्या होती है, बिना गुरु से इन चीजों को समझ करके किसी को इसमें तनिक भी प्रवेश नहीं हो सकता। गुरु की बहुत दिन सेवा करे, वैष्णव की सेवा करे तो ये सब समझ में आएगा, और बिना इन सब समझे तत्व में प्रतिष्ठा नहीं होगी, भजन भी आरंभ नहीं होगा। तो उन्होंने गुरु जी जब उनको नहीं आया तो उन्होंने जब उन्होंने उल्टा सीधा व्याख्या किया तो इन्होंने तर्क कर दिया, पूछा आप पास काट करके मत चलिए, अद्वैत ज्ञान किसको कहते हैं बतलाइए, भेदाभेद क्या है, तटस्थ शक्ति क्या है और कृष्ण अद्वैत ज्ञान कैसे होंगे, तो तुम बतलाओ। तो बस विशेष करके इसका विचार उन्होंने दिया है अचिंत भेदाभेद ग्रंथ में, सुंदरानंद विद्या विनोद और ये हरिदास दास, राधा गोविंदनाथ और
अनंत
वासुदेव जी, ये चार इलेक्टुअल जेंट और धर्मराज के गुरु जी कहते थे ये गुंडे हैं,
त्रिशूल का
त्रिशूल तो ही है, गुंडे हैं। ये छिपा करके कुछ कुछ कर, तुम चोर नहीं हो, नहीं को हटा दिया, तुम क्या बाकी हो गया,
चोर हो।
ये तो शास्त्र ने लिखा तुम चोर हो। ऐसे ही शास्त्रों की बातों को छिपा करके उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ अध्ययन किया। सुंदरानंद विद्या विनोद जी के बहुत विद्वान आदमी, बहुत से पुस्तकों को लिखा। गुरु जी ने कहा कि जब तक वो प्रभुपाद जी के आश्रय में थे तब तक तो ठीक लिखा उन्होंने, और जब प्रभुपाद जी का अंकुश हट गया, स्वेच्छाचारी हो गए और गुरु जी को भी छोड़ करके बाबा जी सहजिया बाबा जी से हो गए, तब निरंकुश होकर के उन्होंने अंत संत गड़बड़ सब लिखा। वेदांत हमारे भागवत में लिखा है वदन्ति तत्त्व विदस्तत्त्वं यज ज्ञानम अद्वयम्, कृष्ण ही अद्वय ज्ञान पर तत्व है। अद्वय ज्ञान पर तत्व और अद्वैत बात एक नहीं है। सुंदरानंद विद्या विनोद ने यह कहा कि कृष्ण भागवत जो है अद्वय ज्ञान पर तत्व को स्वीकार करती है और इसी का प्रतिपादन करती है। अद्वय ज्ञान मनाते न द्वय इति अद्वय, क्या दो अथातु अद्वैत है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय महाप्रभु जी का संप्रदाय अद्वैतवादियों के निकट में है, तुम लोग समझो, नहीं तो तुम लोग पढ़ने से भी नहीं समझेगा, लिखो पीछे समझो, नहीं तो भरंडा भागेगा। तो उन्होंने ये बतलाया न द्वैत इति अद्वैत, न द्वय इति, इसका तात्पर्य यह है कि हम लोग अद्वैत ज्ञान को भागवत का प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। दो नहीं आता तो एक है, कृष्ण एक है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्वेन्द्रपुरी पर जो कि अद्वैतवादी सन्यासी थे उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, और उनके जितने परिकर थे उन लोगों ने सामने अद्वैत मत नहीं लिया। महाप्रभु जी ने स्वयं अद्वैत मत के केशव भारती से संन्यास लिया। यहां तक कि इस माधवेंद्रपुरी भक्त होने पर भी उन्होंने संन्यास लिया अद्वैतवादी से। यहां तक कि मध्वाचार्य ने भी अद्वैत साधु से संन्यास लिया। अद्वैताचार्य इत्यादि सब अद्वैत संप्रदाय के ये सब निकट में है, इसलिए हम लोग अद्वैत ज्ञान का अद्वैत ज्ञान पर गुरु जी ने कहा कि ये पाप सुंदर है, ऊपर से जो कम पढ़े लिखे हैं नहीं समझेंगे, तत्व के भीतर नहीं प्रवेश करेंगे। वो तो कहेंगे सचमुच है तो अद्वैत ज्ञान पर तत्व। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने ये कहा कि हम अत्यंत भेदाभेदवादी हैं, ये किसका मत, भागवत का मत नहीं है, तो महाप्रभु जी ने इसको क्यों स्वीकार किया। इसलिए श्रीमद भागवत का प्रतिपाद्य विषय अचिंत भेदाभेद है, यह समझो, अद्वै ज्ञान नहीं है। अद्वै ज्ञान का तात्पर्य यहां न द्वितीय, अद्वितीय का तात्पर्य है उनके समान कोई नहीं है, ये अद्वै ज्ञान का
तात्पर्य
असमोर्ध और सम ऊर्ध असमोर्ध, ये नाम है अद्वै ज्ञान का। महाप्रभु जी ने नहीं कहा कि हम अद्वैतवादी हैं, तो ये अचिंत भेदाभेद बात किसका है, हमारे जी गोस्वामी का विचार क्या है, अचिंत भेदाभेद है ना अद्वै ज्ञान है। तो फिर अचिंत भेदाभेद यदि अद्वै ज्ञान ही भागवत का ये तात्पर्य है तो ये कहां से आए इन लोगों ने, तथा अशास्त्रीय विचार का इन्होंने अनुमोदन किया या प्रचार किया अचिंत भेदाभेद। इसलिए सुंदरानंद का ऊपर से नीचे कहना तक
और वो जितने हैं जिनका नाम अभी तक लिया, सात विरोधी हैं महापुरुष, अचिंत भेदाभेद, क्योंकि श्रीमद् भागवत में अचिंत भेदाभेद का बात लिखा है और गीता में भी अचिंत भेदाभेद, समस्त शास्त्रों में अचिंत भेदाभेद। वेद का यह अंश व्यवहारिक है और यह परमार्थिक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। जैसे तुम हो, मैं हूं, वह, ये तो शास्त्रों में सर्वत्र है। तत् त्वम् असि, ये त्वम् शब्द आया कहां से? यदि है ही नहीं है, एक ही तत्व है, तो ये वेद तो सत्य है ना, वेद को तो सभी, तो ये कहां से आया
त्वम् शब्द? कहां
त्वम् कहां से आया? अब किसको कह रहा है? स्व को। तो ये कहां से आया? इसलिए अद्वैत बाद ही नहीं है कहीं। अद्वैत ज्ञान का तात्पर्य ये नहीं है कि एक ही है, अद्वैत का तात्पर्य असमोद्भव, अलौकिक, असमोद्भव, सहस्त्र शक्ति युक्त, शक्ति युक्त पराश शक्ति विविध श्रीयते नित्यो नित्यानं है। यहाँ पर नित्य नित्यों का भी परम नित्य है, बहुत से नित्य को स्वीकार किया और तब उनमें भी परम तत्व को स्वीकार किया। गीता में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम, अपरम पुरुषोत्तम, ये सब ऐसा क्यों वर्णन किया और बतलाया? ये उन सब मैं ही, जो कोई मुझे जानेगा, माँ में एव प्रपद्यन्ते ताम माया वेतम सर्वधर्मान प्रत्यज, माँ में एकम ऐसे कहते हैं, माँ में एकम किसको कह रहे हैं? झूठे को, जो झूठे लोग वहां पर थे, अर्जुन झूठा है, इसलिए नहीं, बहुतों में जो सबसे सर्वोत्तम है उसको अद्वितीय अथवा अद्वैत ज्ञान, जिसमें सभी हैं
एकत्व, बहुत सर्वोत्तम।
इसलिए भागवत का तात्पर्य अचिंत भेदाभेद है, गीता का तात्पर्य वेदों का, वेदांत का, उपनिषद सबका तात्पर्य है क्या?
अचिंत भेद,
क्योंकि वेद के समस्त पक्षों की पुष्टि इससे होती है। वेद में दो तरह के विचार हैं, भगवान की शक्ति, भगवान से भगवान की शक्ति, और शक्ति से परिणत जो वस्तुएं हैं जीव और जगत का, भगवान के साथ में भेद भी है, यह अचिंत भेद। वेद में बतलाया, जैसे बतलाया नित्यो नित्यानंद, दो सपर्णा सायुजो सखाया, एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, एक पक्षी जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा, परमात्मा जीवात्मा का साक्षी है, वो सब देखता है क्या ये कर रहा है, और जीव फल चखता है, क्या फल? अपने अच्छे गुरुओं पर का फल चखता है, प्रभु चखता नहीं है, वो क्या करता है? साक्षी के रूप में देखता है, जी ये क्या कर रहा है। तो ये दोनों दो हुए, ऐसे हजारों सब मिले हैं। और ये भी लिखा है सर्वमुखालोकन ब्रह्म, सभी ब्रह्म, ऐसा भी लिखा है, ऐसे बहुत से हजारों सब मिलेंगे, एको
एको हम बहुश्याम,
बहुश्याम ऐसा भी लिखा गया। स ऐक्षत, उन्होंने इच्छा की और ये जगत और जीव हुआ, इसलिए अद्वैत नहीं है ये दोनों को मिलाकर के वेद के सभी अंश ही सत्य है, उसमें कोई भी झूठ और व्यावहारिक नहीं है, सभी परमार्थिक सत्य है, किंतु उनमें तारतम्य है। जैसे हम लोगों में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बुद्धि में, कोई अकल में, कोई कुछ में, कोई शारीरिक बल में, सब में तारतम्य है, उसी प्रकार से तारतम्य वहां पर शिकार, सभी एक अद्वै खिचड़ी, निर्विशेष निराकार नहीं, ये अद्वै ज्ञान का तात्पर्य, उसी के अंदर में उनकी शक्ति और शक्ति परिणत समस्त जीव और जगत,
सबके साथ में प्रभु का कृष्ण का भेद भी है किंतु कैसा है, अचिंत। मानव मेधा के द्वारा अपनी शक्ति से नहीं होगा, वेद बुद्धि कम में है। वेद बुद्धि माने गुरु परंपरा से जो विचार आ रहे हैं उसका अनुसरण करने पर हम देख सकेंगे कि ऐसा होता है, और कोई स्वतंत्र सोचे यदि अचिंत माने एकदम कुछ चिंता नहीं किया जाता ऐसा। इसलिए ये सब विचारों को कौन सुनेगा, कौन बतलाएगा, स्कूल कॉलेज में ये होगा। इसलिए गुरु महाराज जब कोई ऐसे सुंदर स्पष्ट करते जब उनको समझाने लगे वो देखते रह गए, कहे इनके यहां हमको क्या पढ़ना है, बस कजरी जानते करके प्रभु पाद के चरण कमल है। विद्या वही, विद्या किसको कहते हैं, भागवत अवधि,
भागवत अवधि
अथवा विद्या
तनुमति
जया, जिसके द्वारा भगवान के चरण में मति है। इनसे गुरु जी से हम अपना पढ़ेंगे, इनसे क्या हम पढ़ेंगे, ये तो हमारे छात्र भी होने लायक है, इसलिए छोड़ करके चले गए। जब वहां आए तो प्रभुपाद जी ने कहा, जिसे वो आए थे अपनी पिसी माँ के साथ, हम लोग में शेष शाही देखा होगा, तुम्हें देखे चलो, और कोई जब होगा पुराना आदमी को देखा, ये भी देखे होंगे किंतु उसमें याद नहीं, शेष शाही देखे थे। बड़ी विदेशी महिला थी, बहुत विदेशी महिला, साथ साथ में कविता बनाती थी। गुरु जी परिक्रमा जा रहे हैं और उनका लिखना हो चल रहा है कि कहां कहां पर कैसे दर्शन किया कराया सब, तो वही छोटे से बच्चे 16 वर्ष के बच्चे को ले आई थी, वही इनको हरि कथा पहले सुनाती थी। अंत तक गुरु महाराज जी ने बड़ी किए रखते थे, उनकी सेवा कर रहे अंत तक हम लोग सब लोग, तो वो इनको लेकर के प्रभुपाद जी के आई या प्रभुपाद के चरण में इनको समर्पित कर दिया। तो प्रभुपाद जी उस समय कहते थे जी हम अभी एक भी मठ नहीं था केवल मायापुर में, उन्होंने कहा जी 9 द्वीप में 9 हम मठ करेंगे, और भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े शहर हैं सब जगह में हम प्रचार केंद्र करेंगे, और वहीं से सब जगह पृथ्वी भर में
प्रचार
करेंगे, भगवान का कीर्तन का ना चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का और कीर्तन का प्रचार करेंगे हम विश्व भर। इन्होंने कभी भी मठ तठ और जमीन खरीद करके नहीं बनाया। जिस प्रकार से हो किराए में रखा, प्रभुपाद जब तक थे अधिकांश किराए में ही थे, क्यों लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और वहीं से प्रचार होगा। तो ऐसी जब तक भावना थी, निस्वार्थ भाव से सब लोग रह करके खूब प्रचार करते। गुरु महाराज जी क्या करते थे, जब मठ में आए पढ़े लिखे लड़के, जमींदार घर के लड़के, परम कोमल शरीर इनका, और वो बिना जूता बिना किसी चीज के बिना छाता सवेरे भोर में अन्न चावल माने उसी को गीला बना दिया जाता
आड़ी अन्न,
और उसमें नमक देकर के खा लिया, कभी उसमें साग भी उसमें मिला देते, कभी कुछ और दे देते, इसी तरह से कभी आलू उसमें दे देते, और सवेरे खा करके निकल जाते बक्सा लेकर के लकड़ी का, और कुंजी रहती
प्रभुपाद
जी के पास में सबकी, और प्रभुपाद ने कहा 2 पैसे 4 पैसे 1 आना से अधिक मत लेना किसी से, बस 1 पैसा 2 पैसा जो डालेगा बस वैसे, और ऐसे नहीं महाप्रभु जी के कथा सुनाना जी कहां से तुम लोग आए हो, मायापुर से आए हो या कहां से गौरी मठ से आए, किस लिए हम लोग ले जा रहे हैं, एक बात कृष्ण नाम कीजिए, कृष्ण नाम का क्या महात्मा है, भक्ति किसको कहते हैं, इसलिए लोगों से संपर्क होगा और प्रचार होगा और मान अभिमान दूर होगा। तो गुरु जी जाते थे, एक दिन प्रभुपाद अपने प्यारी लाल ड्राइवर माने ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद का ड्राइविंग करते, तो वो दो पर में कहीं काम से जा रहे थे कलकत्ते में
गड़ेरमाठ
जहां पर की किला है अंग्रेजों का द्वारा स्थापित किया हुआ, बहुत बड़ा भारी महल है, उसमें एक बरगद के पेड़ के नीचे दोपहर में 12 बजे दोपहरी में और जेठ के महीने में एक पेड़ की जड़ पर वो बक्सा रख करके उसी के ऊपर में सीट दे करके और ऐसे ही विश्राम कर रहे थे गुरुजी, 16-17 वर्ष के बच्चे, 18 वर्ष। प्रभुपाद जी ने देखा, प्यारीलाल ने बताया, अरे देखो विनोद 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 सो रहा है। प्रभुपाद जी ने देखा, चले गए कि तो फिर शाम को आकर के वही देखकर के इनकी विशेष कृपा हुई। जैसे यशोदा जी का परिश्रम देकर के कृष्ण द्रवित हो जाते हैं, कृपा कब होती है? किसी की एकांतिकता देकर के, गुरु सेवा में। गुरु सेवा मैंने क्या, ये भगवान की कथाओं का प्रचार। गुरु जी का पैर दबा रहे थे ना, गुरु जी को खिला रहे हैं, किंतु गुरु जी के इसके लिए ऐसे कोमल शिशु बच्चे अभी, और इस प्रकार से दोपहर में धूप में चिलचिलाती हुई धूप और उसमें पड़े बिना खाए, गुरु क्यों नहीं दया करेगा उन पर? अवश्य करता है। ऐसे ही कृपा को ग्रहण करने की शक्ति चाहिए, कठोर परिश्रम भी चाहिए। एक समय में इनको कोई उतना नहीं जानते थे, जो ये पढ़े लिखे और विद्वान आदमी और खूब मेधावी हैं, साधारण ही समझते थे लोग, किंतु सभी लोग जानते थे जो अलौकिक बालक, सभी बड़े डरते थे। परमानंद प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य दोनों एक सम वयस्क, परमानंद प्रभु जी की उम्र इनसे 4-5 वर्ष बड़ी ही होगी, किंतु दोनों में लंगोटिया याद जैसा भाव, एक ही बिछौना पर सोना, कभी एक थाल में भी खा लेना, ऐसे उनके आप प्रभुपाद जी की सेवा करते थे और तू तड़ाका परस्पर करते थे, और प्रभुपाद जी इनको तुमी तुई ये सब करते थे दोनों को। और वो ऐसे थे, रात में यदि कहीं किसी काम में गए हैं 12 बजे रात में लौटे, प्रभुपाद प्रभुपाद खोलो प्रभुपाद खोलो, धक्का दिए जोर कर दिए, और सब लोग डरते, अरे ये क्या कर रहा है, प्रभुपाद जी को उठा रहा है सो रहे हैं, और वो मानेगा नहीं, जोर जबरदस्ती कर करके अभी सो रहे हैं, इसे कसने उठा करके तब फिर जाकर के घर में सब ठीक ठाक कर करके प्रभुपाद का मुसहरी लगाना और सब काम यदि ठीक है तो देख सुन करके तब फिर आराम से सो। हम लोग तो कितना डरेंगे, किंतु उनकी सेवा के लिए ऐसा करते। यदि किसी को पैसे की जरूरत है तो प्रभुपाद जी सहज ही पैसा नहीं देते थे किसी को, बड़ी मुश्किल से देते थे, जानते थे जब पैसा को रोजगार करना सहज है किंतु पैसे को परमात्मा में खर्च करना बड़ा कठिन है, पैसे को खर्च करके नरक में लोग जाए, एक एक पैसा कहां से कितना कष्ट करके लाया है, इसको कैसे परमात्मा में केवल हम करेंगे इसका कल्याण हो, इन्हें सहज ही नहीं देते, तो नहीं देते थे, और जरूरत है तो जाकर के परमानंद प्रभु से लोग कहते थे, प्रभु प्रभुपाद तो दिवे ना आपने कुछ प्रभुपाद काछे थे के नियम आके दिए, तो कहते थे प्रभु प्रभु प्रभु, अरे प्रसाद दिए देना फिर ये देना भले ये दे मैंने दे दीजिए, अरे तुम चुपता था तो, अंत में जब प्रभुपाद जी दे दे ठीक है, नहीं दिया जब किसी कारण से तो बस झट पॉकेट में हाथ निकाल करके और पैसा ले लिया और लेकर के और उसको दे दिया जाओ, ऐसे उनके मुंह लग गए और बड़े प्रिय थे। तो प्रभुपाद जी का नियम था, यदि किसी ब्रह्मचारियों में कोई मनोमालिन्य हो गया तो हर एकादशी को या कब कुछ मीटिंग कराते थे, और उसमें सब ब्रह्मचारी सन्यासी लोगों को बुलाते थे, और इनके गुण के संबंध में कुछ बोलिए, ऐसा करते थे। जैसे किसी दो लड़कों में लग गया, उन्होंने एक कहा तुम इनके संबंध में बोलो, और उसको कहे तुम इनके संबंध में बोलो, तो उस समय तो भरी सभा है, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी और ब्रह्मचारी सब लोग हैं, उस समय अवगुण की तो बात कर ही नहीं सकते, केवल गुण की बात कर, तो उसमें क्या हमारे लिए इतना कह रहा है, तो वो भी अब अच्छी तरह से उसके संबंध में बतलाया, तो दोनों में गुण वर्णन करने से ऐसा ही होता है। तो एक दिन किसी कारण से गुरु जी को कहा, जैसे तुम परमानंद के संबंध में बोलो तो कुछ, तो गुरु महाराज जी ने, ये वैज्ञानिक पंडित थे, अभी कोई जानते नहीं थे, अब उसी दिन से प्रकाश हुआ, तो उन्होंने वो प्रणाम मंत्र कहा पहले, परमानंद माधव परमानंद माधव हो गया ना।
अच्छा,
ये परमानंद माधव के दास हैं, इनका स्वरूप है। माधव को कैसे प्रसन्न किया जाता है, माधव के प्रतिनिधि हैं, उनको कैसे प्रसन्न करना किया जाता है ये जानते हैं, इसलिए ये परमानंद दास है। कैसे परमानंद दास हुए, ओ भक्तम महो भक्तम नंद गो प्रजौ प्रशांत जनमित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म
परमानंद।
जो जो इसको श्लोक कह रहे हैं ना, जो जो ब्रह्म सूत्र कह रहे हैं,
आनंदमयो
अभ्यासात परमानंदमयो अभ्यासात, ऐसे सब दे करके उन्होंने 8 घंटे तक बहुत सुंदर रूप में, सूक्ष्म रूप में, वैदांतिक भाषा में उनका परिचय दिया। वो बात थे और सब लोग बड़े आश्चर्य, कभी पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, और इतनी कहां से ये सब ये किया, सब लोग आश्चर्य। तो प्रभुपाद ने इनके ये सब दे करके उनकी उपाधि दी कृति रत्न, कृतियों में भी रत्न है, ये उनका उपाधि दिया, बहुत ही सुंदर नाम दिया। तो विद्या क्या, विनोद बिहारी कृति रत्न उनका नाम दिया। और वेदांत की जितनी भी पुस्तकें थी उन्होंने कहा ये सब तुम ले जाओ, ये तुम पढ़ना और तुम अपने पास में रखना, किसी को मत देना। तो ये सब पुस्तकें प्रभुपाद ने खुद उनको दे दी, और वेदांत के ऊपर में इनको बीच बीच में कहते थे कुछ लिखने के लिए, तो उस समय पत्रिकाओं में छपता, उसी समय उन्हीं के प्रभुपाद जी के करुणा से स्फूर्ति से उन्होंने उसी समय में यह लिखा था मायावाद का जीवन जन वैष्णव विजय, उसी समय में लिखा। उसको देख करके बड़े विद्वान लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसा अनुपम ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उसमें यह दिया है जितने असुर लोग थे वो अद्वैतवादी थे, इसलिए शंकर भी अब उसी श्रेणी में, ये बौद्ध जितने हैं असुर हैं, हिरण्यकश्यप को पहला नंबर का अद्वैतवादी, और उसी का वंशज हुआ रावण, ये प्रधान उस समय अपने समय में अद्वैतवादी, लंका अवतार सूत्र उसने लिखा था अद्वैतवाद के सूत्र, और उसी को गौड़पाद जी स्थापित किया अपनी उपनिषद है वो कौन सा है, उसी की कारिका में मांडुक्य उपनिषद की कारिका, कारिका किसको कहते हैं, कारिका किसको कहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो कुछ भाव होते थे स्वरूप दामोदर अपने संस्कृत भाषा में श्लोकाकार में लिख लेते थे, इसको कहते हैं कारिका ना? उसी प्रकार से मांडुक्य जो उपनिषद है उसी की कारिका उन्होंने बनाई, किसने, उसी को शंकराचार्य ने उसका उसके नहीं उसकी व्याख्या की, व्याख्या जैसे इनका क्या तात्पर्य है, और अपने गुरु जी को दिखलाया गोविंदपाद को, गुरु जी कहते हैं यदि मुक्ति में जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है और उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो गौड़पाद जी जो इनके परम गुरु थे उनकी मांडुक्य कारिका पर उन्होंने जो व्याख्या लिखी शंकर ने, उसको देख करके गोविंदपाद और गौड़पाद दोनों ने आशीर्वाद दिया, ये कैसे संभव हुआ,
तो मुक्ति से मिल गए तो फिर आए कैसे?
मुक्ति और भी
आए समझ में क्या? मुक्ति पाते हैं संपूर्ण रूप से ब्रह्म में मिल जाना, निर्विशेष ब्रह्म हो गया। यदि वो ब्रह्म हो गए तो फिर उस कारिका की व्याख्या देखने के लिए गोविंदपाद और गौरपाद कई आए तो आए तो उनकी मुक्ति नहीं और शंकर की भी मुक्ति नहीं, और ये तीनों भी असुर श्रेणी में है क्योंकि रावण की परंपरा में है और वो क्या
वक्र
अष्टावक्र इत्यादि की श्रेणी में ये लोग हैं। इसलिए गुरु जी ने उस पुस्तक में ये दिखलाए कि आज तक के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं है कोई वैष्णव अद्वैतवादी हुआ, किंतु जितने अद्वैतवादी थे वो परास्त होकर के पीछे से वैष्णव धर्म अधिकांश लोगों ने ग्रहण किया है। विशेष करके ब्रह्मवादी सनक सनंदन और सुखदेव गोस्वामी और भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सब लोग कोई भी वैष्णव को शंकराचार्य ने हराया हो अपने दिग्विजय के समय ऐसा कहीं उल्लेख है? किसको हराया? केवल कर्मियों को, ज्ञानियों को, बौद्धों को और सांख्य जो और कर्म मीमांसा इनको हराया, किसी वैष्णव के पास में नहीं गए। वृंदावन में आए थे और भागवत पर कुछ लिखना चाहा, ये भागवत से कुछ श्लोकों को लेकर के हम अद्वैत की सिद्धि करेंगे, जैसे वेदांत के सूत्रों का उल्टा अर्थ कर दिया, तत्त्वम असि तुम भी वही हो, किंतु इसका अर्थ है तत्त्वम असि तुम उनके सेवक हो, ये अर्थ है, उसका उल्टा अर्थ बना दिया। ऐसे ही सब अर्थों का कदर्थ किया, किंतु भागवत पर जब यहां पर वृंदावन में आए तो उनको कहीं से सुनाई पड़ा, वृंदावन में अधिक दिन मत रहो, भागवत पर कलम मत उठाना, भागवत भगवान का कृष्ण का ये शरीर है, इसी अंग है, वेदांत को लिया वो ठीक है, उपनिषदों को लेकर के उसका कदर, किंतु भागवत के ऊपर में कभी भी हस्तक्षेप मत करना। इसलिए उस पर उन्होंने कलम नहीं उठाई, बल्कि गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते ऐसा उन्होंने कहा। इस तरह से गुरु महाराज जी उस ग्रंथ में ऐसा ही उन्होंने किया, और अचिंत भेदावेद ग्रंथ में अद्वैत अभी जो अद्वैत ज्ञान तत्व को बतलाया ना, इस प्रकार से खंडन कहने तो तुम लोगों की बुद्धि भी यदि वो पढ़ेगा सुंदरानंद का पुस्तक ना सचमुच में मालूम होगा, हम भी पहले जब पढ़े तो ऐसे मालूम हुआ, किंतु गुरु महाराज जी का जबकि ये एक्सप्लेनेशन जब सुना तो मन कर ही नहीं ऐसे।